तभी तो है ना, दिमाग है कि नहीं है, समझ नहीं रहा मेरी बात को, ऐसी कहते हैं ना हम लोग घर में, ऐसे ही कहते हैं ना, बुद्धि नहीं है क्या, बात समझ में नहीं आ रही, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास, इसका क्या अर्थ है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट क्या सही है और क्या गलत है, और फिर जो सही है उस रास्ते पे चलना है, ये भी बुद्धि का कार्य है, फैसला करना सही या गलत का बुद्धि का कार्य है, और उस रास्ते पे चलना भी बुद्धि का कार्य है, उस पर कैसे चला जाएगा। तो यहां जो है प्रभुपाद ने पहले ही सेंटेंस के अंदर जो है बहुत बड़ी बात कही कि आपके पास मस्तिष्क या दिमाग होना चाहिए, मीन जो मेरे सामने लोग बैठे हैं इनको स्पेसिफाई कर दिया क्लियरली कि भाई तुम लोग सही को सही और गलत को गलत भेद जाना समझ जाओ, यू शुड नो इट। इसके बाद कहते हैं तभी उसकी धुलाई का प्रश्न होता, जब समझ ही नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है तो धुलाई का मतलब क्या है, गंदगी साफ हो जाए, धुलाई इसी को कहते हैं, कपड़ा धोते हैं तो क्या करते हैं गंदगी साफ हो जाए, हाथ धोते हैं नहाते हैं क्या करते हैं गंदगी साफ हो जाए, धुलाई का मतलब है गंदगी की सफाई हो जाए। यहां मस्तिष्क की धुलाई का मतलब क्या है, जो कलमश हमारे मस्तिष्क में आए हुए हैं, जो गंदगी हमारे मस्तिष्क में समाई हुई है उसको साफ करके उसको स्पष्ट तौर पर देखें, स्पष्ट क्या है और गंदगी क्या है, व्हाट इज गंदगी, गंदगी है व्यक्ति का इंद्रिय भोगों में लिप्त होना, और धुलाई के बाद जो स्वच्छता आएगी उसका अर्थ क्या है, कृष्ण भावना वाले होना, क्लियर है बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि मस्तिष्क की धुलाई का मतलब है कि पब्लिक की जब मस्तिष्क की धुलाई की जाएगी तो उनको कृष्ण भावना भावित बनाया जाएगा, कृष्ण के प्रति आकर्षित किया जाएगा और भौतिक सुख भोगों से दूर रहेगा। दे शुड अंडरस्टैंड कि जो लाइफ है ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है पशुओं की भांति, लाइफ किसके लिए है, मनुष्य भाव जो मिला है किसके लिए मिला है, कि आप जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं मस्तिष्क की धुलाई। तो यहां कहते हैं किंतु आपके पास दिमाग है ही नहीं, एक और बात कह दी, जितने लोग बैठे हैं उनसे ये कह दिया कि आपके पास तो दिमाग है ही नहीं, आप नहीं जानते कि जीवन क्या है, आप नहीं बता सकते कि एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है, आपके पास इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं किंतु आप ये नहीं जानते तो फिर आपके दिमाग है कहां। तो कृष्ण भावना भावित होने का पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं इसका पहला स्टेप क्या है, आपको आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, इसका पहला स्टेप है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, अर्थात मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान है कि नहीं है, है तो मेरा क्या संबंध है और संबंध को कैसे निभाना है, ये बेसिक साइंस है। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर दिमाग है तो आप क्या इस बेसिक्स को समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ये नहीं समझते हो यही नहीं बता सकते हो इसका मतलब है आपके पास दिमाग नहीं, अर्थात दिमाग होगा पर आपने उसका ठीक से प्रयोग नहीं, नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, आप उसे अभी भी इंद्रिय भोगों के प्रति ही यूटिलाइज कर रहे हो, आप कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त करना है, कृष्ण भावना भावित की बिगनिंग कहां से होनी है, इसके प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, आपका कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आप उस मामले में जीरो। इसके बाद वो एक और बढ़िया बात है, सर्वप्रथम अपने दिमाग का प्रमाण प्रूफ दैट यू हैव माइंड साबित करो, तभी उसकी धुलाई का प्रश्न उठ सकता है। मतलब दिमाग के प्रमाण का अर्थ क्या है? आपको ज्ञान नहीं है, एग्री, आपको मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं, मान लीजिए बात, यू आर जीरो इन दैट। पर आपके पास दिमाग है तो आपने एक बात सोची, यार ये रास्ता ठीक लगता है मुझे, इस तरफ जाना चाहिए, यही प्रमाण हो गया। यस यू हैव माइंड, कि तुम सोच पाए कि मुझे इंद्रिय भोगों का रास्ता त्याग के कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के रास्ते पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कोई नॉलेज नहीं, अभी मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है, पर मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, इसका प्रमाण क्या मिला कि मैंने उस रास्ते पे पहला कदम एंटर दैट पाथ, मैं तो सोच लिया मैंने कि भाई एक रास्ता भौतिक भोगों के भोग से अलग भी है, उस रास्ते को ट्राई करके देखना चाहिए, तो उसका मतलब दिमाग है तभी उधर आए, नहीं होता तो नहीं आते, उसी में फंसे रहते, नहीं होता तो भौतिक भोगों में फंसे रहते। इसका मतलब है आपने एक प्रमाण दे दिया कि यस मेरे पास दिमाग है, अब मैं उस रास्ते पे चलने की सोच रहा हूं, अब चलना कैसे है ये ज्ञान प्राप्त करूंगा, फिर चलूंगा उस ज्ञान के अनुसार। अभी तो मैं नर्सरी में एडमिट होना चाहता हूं, नर्सरी, नर्सरी भी नहीं, प्ले स्कूल, प्ले स्कूल में एडमिट होना चाहता हूं कि मुझे पता लगे भाई ये तो बताओ भगवान है कौन। हम तो मंदिर में जाते हैं, अनेक दिखाई देते हैं, हम तो सबको भगवान मानते हैं, क्या सारे हैं कि ये वो एक है तो है कौन, मेरा उससे क्या संबंध है, फिर मैं कौन, ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है आपके पास दिमाग है तो सवाल उठ रहे हैं, दिमाग नहीं होते ये सवाल आते ही नहीं, मैं कोई पूछता ही नहीं, उसका बाहर निकल के पूछ लीजिए, कोई सवाल ही नहीं सुना होगा किसी ने, उत्तर को क्या जानता है, उसने सवाल भी नहीं सुना होगा कि मैं कौन हूँ, अरे मैं श्याम सुंदर हूँ, मैं राम कुमार हूँ, मैं श्याम कुमार हूँ, मैं प्रमोद कुमार हूँ, मैं कौन, मैं बता रहा हूँ मेरा नाम क्या है। उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने नाम से करना, जो गुरुवाद यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं उस बात में जोर दे रहे हैं कि भाई पहले अपने दिमाग का प्रमाण तो दो कि तुम सही और गलत में भेद कर पा रहे हो, यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फैसला कर पा रहे हो कि हाँ भाई मैं एक मार्ग के साथ ही चल रहा हूँ, मैंने किसी से सुना है कि भाई हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आत्म साक्षात्कार क्या होगा। आई वो एक एक वो कहते हैं कि इच्छा जागृत होती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, नाम नहीं याद है, आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, मैं शाम को यहाँ लेक्चर कर रहा हूँ, एक फैमिली आई नौ अंदर भाई दर्शन बंद हो गए, दर्शन बंद हो गए तो कथा चल रही थी, किसी ने कहा बैठ जाओ, किसी युवती ने कहा बैठ गए, 9:30 तक कथा चली, उठी उसके बाद आए, कह लगे हमें नहीं पता था कि मंदिर में दर्शन के अलावा कथा भी होती है, नॉलेज नहीं थी, सामने से गाड़ी से हजारों लोग निकलते सर्वे से लेकर शाम तक, कितने लोग अंदर आते, कोई नहीं आता, सिलेक्टेड से लोग हैं, कुछ लोग खिचड़ी खा के निकल जाते अंदर नहीं आते, खिचड़ी खाते निकल जाते अंदर नहीं आते, कुछ लोग बाहर से ही मंदिर में रिव्यू कर लेते, हाँ मंदिर है चलो आगे बढ़ो, पर वो आया कथा में समझ में आया नहीं आया हमें नहीं, पर उसके मन में भाव प्रकट हुआ कि मैं तो दर्शन करने आया था, मंदिर के दर्शन बंद हो गए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कथा भी होती है, फिर वो किसी डिवोटी के पास, डिवोटी ने उसको थोड़ा सा समझाया कि यहाँ से सवेरे मंगल आरती होती है, तो उसके बाद ये आती वो आती सब कर करा के सवेरे भागवतम होता है, फिर शाम को कथा होती है, तुलसी पूजा वो सारे उसको प्रोग्राम बताया, तो स्टार्ट दे दिया, उसको सारे प्रोग्राम लिखे होते, उसके बाद वो मुझे एक बार मिला 6 महीने मुझे गेट पे पहचाना, प्रभु जी वही है ना उसको कथा कर देते, उस दिन मैं आया था दर्शन करने के लिए, दर्शन बंद हो गए थे, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या बोलने सुन लिया जाए, उसके बाद से मैंने रेगुलरली आना शुरू किया। अब मैं जो है हफ्ते में एक बार दो बार आता, मीन्स सम हुआ तो दिमाग में चेंज आया, दर्शन हुए तो दिमाग में चेंज आया, भक्तों का संग मिला मंदिर के अंदर तो दिमाग में चेंज आया। पर दिमाग था तभी चेंज आया, दिमाग नहीं होता तो दर्शन बंद से वापस चला जाता, बैठता नहीं। उसने दिमाग होने का प्रमाण दिया कि यस दिमाग है तो बैठ गया भक्त के कहने, अपने आप नहीं बैठा, किसी डिवोटी ने कहा बैठ जाइए, खड़े होते हैं ना लोग काफी सारे, बैठ जाए, बैठ गया वो भी बेचारा, फैमिली बैठ गया। तो यहां जो है प्रभुवार कह रहे हैं कि दिमाग की धुलाई, हमारा आंदोलन दिमाग देता है। और बात कहते हैं हम जो है जिनके पास दिमाग नहीं है, अर्थात जो राइट एंड रॉन्ग में भेद नहीं कर पाते, हम उनको दिमाग देते हैं कि राइट और रॉन्ग में भेद कर पाए, सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाए, क्या सही रास्ता है और क्या एक प्रकार का भी बहुत बढ़िया लिखा क्लास। दुर्भाग्य से आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए आपको गलत फहमी है, इस बात की व्याख्या भगवद गीता करती है। आप क्या समझते हैं कि हम दिमाग की धुलाई कर रहे हैं या दिमाग दे रहे हैं? अब आप बताइए कितने लोग मानते हैं कि आपको इस कौन में आके दिमाग मिला, और कितने लोग मानते हैं कि सिर्फ धुलाई हुई, दिमाग हमारे पास पहले से था? दो हाथ खड़े हुए बस। कितने लोगों के पास पहले से दिमाग था, हाथ खड़ा करो, था एक दो तीन, तीन लोग। और कितने लोग ये मानते हैं कि यहां आके हमको दिमाग मिला? सारे आपका दिमाग मिलने का अर्थ बड़ा सिंपल है कि जहां जीरो थे अब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हीरो, तब आप हीरो। हीरो किसके? भगवान के नृत्य मंडली। नाउ यू आर ए डांसिंग स्टार। मजा आता है नहीं आता नृत्य करने में? कीर्तन होता है तो नाचने में मजा आता है कि नहीं आता? अब देखिए नाचने का फायदा क्या है, सबसे बड़े क्या है नाचने का एडवांटेज बताइए क्या? नाचना, नाचना आप करते हैं कीर्तन, इसके बिना नाच ही नहीं सकते। कीर्तन होता है तो नृत्य होता है। इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कीर्तन। नृत्य सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी तो कीर्तन है कि आपको संसार के अंदर जब आप भौतिक सुख भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं तो आपको रचाती है माया। माया रचाती है, आकर्षण देती है, भौतिक संसार का आकर्षण जो है माया के द्वारा है। तो माया जो है वो आपकी भौतिक संसार में गुरु है, नर्तकी है आपको नचाती है, तो माया को भगाना है। तो क्या तरीका कि आप नर्तकी को उल्टा करें, करिए उल्टा, न र ग की र त न, कीर्तन होते ही माया गायब, नृत्य चालू, भगवान के प्रति आकर्षण आरंभ। बहुत लोगों से मिला, कहते गुरु जी कीर्तन में आप देना नशा, नशा मतलब फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, बस यही लगता है कि कीर्तन होता रहे और हम मस्त होते। अर्थात कीर्तन जो है नर्तकी का उल्टा, अर्थात माया को हटाना है तो कीर्तन में इंटरेस्ट जमाना है। और जब सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं तो क्या कहलाता है? हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
अब दिमाग मस्तिष्क जो है मेरा शरीर का खराब बुद्धि पानी शुरू आगे आदि केशव ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। श्री प्रभुपाद ने कहा भक्तों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए और एक लेख लिखकर न्यायालय को भेज देना चाहिए। उनका मुख्य तर्क था कि अधिकांश लोग आत्मा के संबंध में अत्यंत सामान्य सच्चाई को नहीं जानते, उन्हें ज्ञान की जरूरत है और कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें आत्मा विषय जरूरी ज्ञान दे रहा है, अतः यह एक दिमाग देने वाला आंदोलन है। आदि केशव ने विरोधियों की भूमिका ली, उसने कहा अच्छा मेरे पास दिमाग है और मैं कार्य कर रहा हूं, अन्यथा मैं इस समय आपसे बात कैसे कर सकता था, मैं आपको उत्तर भी कैसे दे सकता था। अब वो उस लेवल पे आ गया है आदि केशव नाटक कर रहा है, कहा विरोधियों की भूमिका ली जैसे राम वो एक्चुअली बात नहीं कर रही। अब उसने राम ने क्या बोला कि मेरे पास दिमाग है, अब दिमाग थोड़ा दे दो, पहले से था मेरे पास दिमाग है, दिमाग है तभी तो आपसे बात कर रहा हूं, दिमाग है तभी तो आपसे बात कर रहा हूं। श्री प्रभुपाद ने कहा किंतु यह बात करना आज जो तू बात कर रहे हो यह बात करना कुत्ते का भावना बराबर है। किंतु यह बात करना जैसे तुम बात कर रहे हो विरोधी की तरह ड्रामा कर रहा है, विरोधी की तरह तुम्हारे दिमाग है जी मैं तो आपसे तुम्हें बात कर रहा हूँ। गुरुपाद कहते हैं किंतु ये बात करना कुत्ते का भौंकना बराबर है, कुत्ता भौंक रहा अंतर क्या है, एक भिन्न भाषा में बोल रहा है तो इतनी सी तो बात है, कुत्ता भौंक रहा है और तुम बात कर रहे हो, दोनों में अंतर क्या। किंतु वे कहते हैं हमारे पास कला है, हमारे पास विज्ञान है, आर्ट भी है साइंस भी है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया तुम्हारे पास जो कुछ भी हो तुम चरम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मैं कहा मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को मुझे कैसे निभाना है, उत्तर नहीं दे सकते। कर्मों का आदान प्रदान होता रहा और कक्ष में उपस्थित अन्य भक्तों ने भी प्रभुपाद के तर्क को चुनौती दी, किंतु शील प्रभुपाद अपने तर्क पर अटल रहे। यदि कोई व्यक्ति मृत और जीवित मनुष्य में अंतर नहीं कर पाता, यदि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है तो उसके पास दिमाग। एक टू बात कहेगी दिमाग का होना अर्थात आत्मा को अंडरस्टैंड करना और दिमाग का ना होना आत्मा को अंडरस्टैंड नहीं करना। अगर आप आत्मा और शरीर को अंडरस्टैंड करते हैं उनका भेद समझते हैं तो आपके पास दिमाग है, नहीं है तो दिमाग। जब भक्तों ने शास्त्र में विश्वास की बात उठाई तो श्री गुरुपाद ने कहा
अपने शास्त्र के आधार पर दलील नहीं दे रहे थे, प्रत्यु तर्क के आधार पर हो रहे थे। भक्त जो भी दलील देते श्री प्रभुपाद उसका जोरदार खंडन करते। तो श्री प्रभुपाद अपने लोगों को अभ्यास करा रहे थे कि किस प्रकार आत्माओं दलीलों से बचाव पक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उस समय उनमें बीमारी या कमजोरी का देश मात्र नहीं है। उस देश में आगे शरीर ठीक हो जाए, कमजोर हो जाए, जो शक्ति 25 साल के बच्चे में होती है वो 45 साल के अधिक में नहीं होती। और जो 45 साल के अधिक में होती है 65 साल के अधिक में शक्ति कम हो गई। परंतु जब भगवान की बात आई है तो शक्ति कम होने के बावजूद कोई बीमारी कोई कमजोरी लक्षित नहीं हुई, एकदम कहीं कमजोरी दिखाई नहीं। काली केशव ने कहा, वे कहते हैं ये समझ, ये बहस हमारी समझ से ऊपर के जवाब बोले, यदि तुम इसे अपनी समझ से ऊपर बताते हो इसका मतलब है तुम्हारे पास दिमाग तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। श्री प्रभुपाद के साचार्य से आदि केशव में शक्ति और विश्वास उत्पन्न, ये भक्त के संदास है। हाउ यू बिल पावर, शारीरिक बल नहीं, पावर टू फैसला कर पाना क्या सही है और क्या गलत। आदि केशव ने कहा, उनकी शिकायत है कि यदि वह भक्त बन जाता है तो अपनी पहचान खो देता है। मेरी पहचान क्या है जी, मैं तो शुरू रूप में रहता हूं, लंबे लंबे व्यक्ति लगता हूं, सिगरेट भी पीता हूं, दारू का भी मूड लगा लेता हूं, और भक्त बनने के बाद तो सभी कुछ छूट गया, वही मूड मूड हो गए, अगले हो गए, पहचान ही खुद ही मेरे थे तो वह पहचाने गए नहीं। किंतु वास्तव में वे नहीं जानते वे कौन हैं, हमने इसी तरह चुनौती देंगे कि पहचान होने का क्या तात्पर्य है। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम क्या हो, अगर तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं। शिव भगवान ने उत्साह से भरकर कहा, हाँ तुम्हारी पहचान क्या है, तुम तो ये भी नहीं जानते, हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि शरीर से तारा करके तुम अपनी पहचान खो दी है। अपनी आइडेंटिटी आपने कब गेन करी है, जब आप स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं। अभी आप शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को एक मानते हैं, इसलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी खो दिया है। तुम्हारी आइडेंटिटी आत्मा है ना कि आदि केशव ने कहा, उनके अधिकांश अभियोग हमारे आंदोलन के विषय में उनकी भ्रांत धारणा पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं, पर्याप्त खाते हैं, खाते नहीं, हम पर्याप्त खाते नहीं, पर्याप्त सोते नहीं। किंतु उनके अपने वैज्ञानिकों के अध्ययन से सिद्ध है कि हमारा भोजन अच्छा है। अब श्री प्रभुपाद मैं फेस करता हूँ, मेरे मरीज आते हैं किसी भी में, डॉक्टर साहब प्याज के बिना रोटी कैसे बनेगी, आप बताओ। लहसुन तो बड़ा अच्छा होता है, हृदय की फुटनों अदरक कोलेस्ट्रॉल हार्ट प्रॉब्लम भागना भागना बहुत सारी चीज़ें करता है, आप कहो खाओ क्या दो बार उत्तर दे। श्री गोबा कहते हैं, यदि हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो हम जीवित कैसे, यही बात हम कहते हैं यहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं, यदि हम भी तो जीवित हैं, हम भी तो नहीं रह रहे, हम तो उसके बिना ही रह रहे हैं, तुम भी रह लो। 10 वर्षों से हम अपने आप को भोजन कर रहे हैं तो हम जी कैसे रहे हैं, तुम लोग नहीं जानते कि अच्छा भोजन क्या है, किंतु परिणाम तुम्हें जानना है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक गाय इतनी अधिक घास खाती है और एक मनुष्य प्लेट पर थोड़ा सा भोजन यदि गाय कहे कि तुम मेरे समान पर्याप्त भोजन नहीं करते तो क्या ये बात गलत संगत होगी? इट इज डिमांड एंड सप्लाई। आपको चार रोटी चाहिए, उनको तीन चाहिए, उनको दो चाहिए, तो उसको छह चाहिए। हर एक की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर एक की डिमांड अलग अलग है। डिमांड से अगर मैं दो खाता हूँ तो मैं भी दो ही खाऊंगी, तीसरी खाऊंगी। नो, मैं चार खाता हूँ तो भी चार खानी पड़ेगी। भाई मेरी रूम की रूम होती है, चार नहीं खाता, खानी पड़ेगी, मैं चार खाता हूँ। नो, यहाँ दो बार ने कहा यदि गाय है तो मेरे समान करते, ये बात तर्क संगत नहीं। आदिकेशन ने कहा नहीं, ये तर्क संगत नहीं होगी। और बात ने कहा तुम लोग बिल्कुल गायों और गधों की तरह खिंचाई वाला माहौल चल रहा है कि तुम लोग बिल्कुल गायों और गधों की तरह हो, तुम लोग पेटों की तरह खाते हो। इसका क्या अर्थ है? मैं भी पेटों की तरह खाऊं? तो बात मैं भी कह रहा था, ध्यान किसी का ही। कमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूछा कि तुम प्रमाण क्या है जो लोग आत्मा का प्रमाण मान सकते हैं? किसी यहां पे गुरु बात जो है उनको बेसिक्स होता है, फंडामेंटल्स, कि प्रीचिंग के अंदर कैसे क्वेश्चन उठ के आते हैं और कैसे आपको उन्हें आंसर करते हैं। हम लोग जो प्रचार करते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये जो बुक्स हैं गुरु बात की, इनको पढ़ने के बाद, गुरु बात के क्वेश्चन आंसर के बाद जो सवाल हमारे मन में होगा है, जो उसके मन में होगा है क्वेश्चन करने वाले के, ऐसे सवाल पहली बार नहीं उठे, ऐसे पहले भी उठे तो गुरु बात ने उनका उत्तर दिया है। तो उनको पढ़ने के बाद हमको भी उत्तर समझ में आ जाता है कि हमें कैसे उत्तर देना है। हाउ डू वी एक्सप्लेन? तो यहाँ गुरु बात ने कहा, फिर गुरु बात ने कहा प्रमाण ये है कि जब सक्रिय तत्व शरीर को छोड़कर चला गया है और यदि आप समझते हैं उसका स्थानापन ढूंढ लीजिए, आल्टरनेटिव निकाल लो, आत्मा चली गई दूसरी डालो, उसको पहला तो दोबारा जिंदा कर दो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके पास प्रभाव नहीं है। बात देखेंगे मृत्यु के समय जब भी शरीर के अंग बने रहते हैं किंतु किसी एक चीज का प्रभाव नहीं। चीज क्या है? कमाल कृष्ण ने कहा किंतु आपने उस चीज को देखा नहीं। चाहे देखो चाहे ना देखो, मैं देख सकता हूँ कि ये व्यक्ति में क्यों है, कोई चीज गायब है। कई बार ना बड़े अजीब अजीब से वीडियो आते हैं व्हाट्सएप, और इंसिडेंटली मैंने दो वीडियो देखे। एक वीडियो था जिसके अंदर हॉस्पिटल बेड के ऊपर एक बेड बॉडी लिखी हुई है, वाइट कपड़ा थोड़ा रखा है और कोई अंदर एक छाया सी निकल के उसकी बॉडी से जा रही है, तो कैमरे में पकड़ ली, व्हाट इज दैट? वो कहे इसको उसने फोटोशॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ कर दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, बट इट इज इनडायरेक्टली एक्सरसाइजिंग ये समथिंग इज गोइंग ऑन। दूसरी बात, एक एडल्ट फुल साइज व्यक्ति है, मतलब है नहीं ये मालूम, पर उसने एक चादर ओढ़ रखी सर से लेकर नीचे और दरवाजे से वॉक करके अंदर आता, फुल साइज ह्यूमन बीइंग खड़ा, चादर यहां से डाल रखी है, चादर यहां फैली हुई जा रही है, और जो कमरे में बैठा व्यक्ति है उसने चादर खींची है अंदर खा ली। व्हाट इज इट? हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते, हमें नहीं समझ में आया कि क्या फोटोशॉप किया गया है या कोई तो उन्होंने क्या बोलते हैं आजकल वो पिक्चर विक्चर बनाते हैं ना, मूवी वीडियो बनाते हैं, जो एनिमेटेड होती है, एनिमेट किया है क्या किया है नहीं मालूम, बट उसे एक इनडायरेक्ट जो है एक एविडेंस मिलता है कि यस देयर इज समथिंग। और उसके बाद हम देखते हैं रीइंकार्नेशन, बहुत सारे केसेस देखते हैं, पढ़ते भी हैं, मिलते भी हैं,
मैं कीर्ति नगर में लेक्चर दिया करता था आज से 10 साल पुराने का, तो जिस कोठी में लेक्चर देता था उसके बगल में कोठी छोड़ के 36 नंबर में एक सज्जन थे जो उस प्रोग्राम में आए और इसमें वो लेक्चर के बाद मेरे से मिले, हमारे से कहने लगे ऐसा मैं जो है सन 54 का मेरा जन्म है, 52 में मेरी डेथ हुई, मुझे 52 से पहले की सारी स्टोरी याद है, मैं रिलेटिव से मिला हूँ कबल बाद में सबसे मेरे सब बातें बताई है, तो लाइफ 2 साल का पीरियड मुझे याद नहीं है, 52 से 54 मैं कहाँ था मुझे, और 54 के बाद का सारा पीरियड मुझे मेरी लाइफ में क्लियर करके एक दो केस बचपन में भी देखे थे, हम छोटे थे तब 11-12 साल के थे, तो हम चार ले गया जब और लाइफ में तब वो याद आते हैं, हर लोग आए और हाँ एक सवाल ये है कि चाहे देखो या ना देखो मैं देख सकता हूँ व्यक्ति व्यक्ति जो है कोई चीज़ गायब हो गई, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप शेयर भी थे 13 जुलाई 2016 को मैंने एक स्वाइट और टेबल चेयर में बैठा हुआ था, मेरी डेथ हो गई, हाउ आई ट्रेवल्ड अप तो सोल है ये हमने प्रत्यक्ष स्वयं को भी अनुभव किया है और दूसरों से भी देखा है, अपनी ट्रांसलेशन भी देखी है और ऐसे एक दो वीडियो भी देखे कि ये स्पीड है, तो ये बड़ा जो लोग नहीं समझते ना समझते इसका अनुभव होने वाली बात नहीं। तमाम कृष्ण ने कहा अच्छा ये तो एक मशीन की तरह है, गुस्सा हो गए और उबला होकर बोले एक मशीन का स्थापन स्थानापन तुम ला सकते हो पर एक नया शरीर लाकर उस मृत शरीर का स्थानापन क्यों नहीं बना लेते, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो ये बिल्कुल भिन्न चीज है अलग चीज। श्री गौपाल ने कहा आत्मा संबंधी इस विचारधारा को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, उन्होंने कहा यह बहुत मनोरंजक होगी, मुकदमा लंबा खींचेगा और अपना संपूर्ण दर्शन खोलकर रख सकते हैं, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, गंभीरतापूर्वक बार बार सोचो और संघर्ष करो, उन्हें बताओ तुम्हारा देखना क्या है, तुम लोग इस दीवार में उस पार नहीं देख सकते क्योंकि तो इसका तात्पर्य यह है उधर कुछ नहीं है, अपने देखने पर ही तुम निर्भर कर रहते हो, तुम बिल्कुल बिना दिमाग के हो, कहो मैं तो इसे अपना पूरा दर्शन समझाने का एक अच्छा अवसर मानता हूँ, इसे अन्यथा मानो मृत्यु इस मामले में अपने आप को पूर्ण योग्य सिद्ध करो, ये परीक्षा का मुकदमा है। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया किस तरह अलौकिक श्रीमद् भागवत की खोज भी कर रहे हैं और भक्तों के दर्शन के आधार में खोज निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभुपाद ने इस तब पर उन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई कि मनुष्य चंद्रमा पर नहीं गया है, फिर प्रभुपाद ने कहा मैं स्वयं तुम लोगों के साथ वहां नहीं गया तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से मैं वहां नहीं गया, केवल कुछ समाचार हैं तो मैं उन्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, वे कुछ समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं तो यही तो है, तो हम वैदिक साहित्य पर विश्वास क्यों ना करें, वैदिक साहित्य इतना प्रामाणिक है और आचार्यों ने उसे स्वीकार किया। आगे भक्तों ने इस विषय में वार्तालाप आरम्भ किया कि अभिभावक कृष्ण भावनामृत के विरोधी किस तरह शक्ति का प्रयोग उचित बताते हैं, कमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा इसमें न्यायालय में असली मुद्दा घनाच्छादित हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माँ बाप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होना स्वाभाविक है। श्री गोपाल ने उत्तर दिया हम शास्त्र से उद्धरण को नहीं देते, मेरे पिता पिता नहीं है, पिता न सब सयात इस श्लोक को हिंदो रघुमन ने दराज से पुस्तक निकाली और कुछ ही पर्व में कुछ लोग पर उंगली रख दी, उसने पढ़ा गुरु न सया स्वजनु न सया पिता न सया जननी न सया देवो न तत्सया न पतिश न च सया न मोक्ष येद्य समुपेत मृत्यु, अर्थात अपने आशितों को बारंबार के जन्म मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकता, बिना तो गुरु होने के योग्य है ना पिता ना पति ना माता ना वासुदेव। श्री भगवान ने पूछा तो वह पिता कैसे कर सकता है, इसका तात्पर्य क्या है, हरि केशव स्वामी ने कहा कि कभी कभी तर्क देते हैं कि बोले हम अपनी बात को दलील दोगे, लेकिन हमारी बात अपनी जगह है, हम अपने दृष्टिकोण से दलील देंगे। जब तक कि पिता अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ाता, तब तक वह पिता बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर बहुत बार कभी चूकते नहीं थे, उन्होंने निष्कर्ष में कहा, यदि तुम किसी दुष्ट को परामर्श देने का प्रयत्न करो तो तुम कहता है स्थिति कुछ ऐसी ही है, तब भी तुम्हें अपना काम, तब भी हमें अपना काम करना है, और हो भी जा सकता है। काम कठिन है कि यदि तुम कृष्ण को अति शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न करना चाहते हो तो उपदेश के लिए संघर्ष करो। ये एकदम परमाणी तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें अपना कार्य करना है, यही हमारा लक्ष्य है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें अपना कार्य करना है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं मूर्ख और व्यक्ति रही मनुष्य के ही प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी संसार मुझ जन्म रही अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता। ये सब मूड है तो हम उन्हें कुछ पाठ पढ़ाने में लगे हैं। जो है दो बार ने बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर दिया, एक बात मिल गया, अगर गवर्नमेंट से मुकदमा हो गया है तो मुकदमे को लंबा खींचो और अपनी बात पूरी की पूरी उनके सामने, ताकि आपको मौका मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को पूर्ण रूप से बताने के लिए। एक दिन में फैसला हो जाएगा, अपनी बात नहीं बता पाओगे अच्छे तरीके से। याद है हम जब पहली बार बस लेने के लिए मिलना हो फर्स्ट टेम्पल डिप्टी जो हमारे साथ, तो हमें ट्रेन कर रहे थे पुलिस उसके लिए, तो मुझसे कहते हैं एक नदी चांस है तुम्हारे पास इनको पुलिस कर कैसे। अब ये तुम्हारी कैद में है, बस से बाहर तो भाग नहीं सकते, इन्हें तुम्हें सोना ही पड़ेगा और रास्ता है नहीं, अब तुम जम के पीछिंग कर मीन्स टाइम मिल गया, एक सिचुएशन मिल गई, एक परिस्थिति मिल गई कि अब वो बस से तो निकल नहीं सकते, तो वृंदावन दादा दर्शन करने के लिए बस बोलना है और 3 घंटे साढ़े 3-4 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे आपके कमरे में 1 घंटा खिलाओ पिलाओ, उनकी पेट पूजा कराओ, फल वल दिए वो कुछ दियो, बाकी इनको 3 घंटे आप हिसाब कर सकते हो। कई लोग बात कहते हैं कि कोर्ट में केस है, जितना लंबा खींचोगे उतना आपको टाइम ट्रेन ज्यादा मिलेगा अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, अपना पैसा रखने के लिए। तो हमें भी जो है इससे सीख लेनी चाहिए कि मौका तलाशना चाहिए कि मौका कैसा है, उसका फायदा कैसा है।